أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کس کے بارے میں عن الجبال پہاڑوں کے بارے میں کیا سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش مکہ نے پوچھا کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ باقی رہیں گے کہ نہیں پہاڑوں کا کیا ہوگا اگر سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا تو پہاڑوں کا کیا حال ہوگا کیونکہ انسان کے نزدیک جو پہاڑ ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی مضبوط ہے آپ تو کہتے ہیں ہر چیز ختم ہو جائے گی ریزہ ریزہ ہو جائے گی تو پہاڑوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یعنی یہ سوال کس لیے تھا اس لیے نہیں تھا کہ وہ کوئی علم چاہتے تھے کوئی جاننا چاہتے تھے بلکہ اس لیے تھا کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ پہاڑ بھی ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں یہ بھی ذرہ ذرہ ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں ان کا سوال بتا کے کہ انہوں نے پہاڑوں کے بارے میں سوال کیا ہے تو یہ بتا دیں فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا آپ کہہ دیجئے کہ اکھاڑ دے گا ان کو میرا رب اکھاڑ دینا گرا دینا یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے گا یہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے ذرہ ذرہ ہو جائے گا ان کا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہاں پہ مانا میں نے آپ کو بتایا نا اڑا دینا بکھیر دینا تو کئی جگہ پہ قرآن پاک میں یہی مضمون آتا ہے جیسے سورہ قاریہ میں بھی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ کیسے ہوں گے دھن کی بھی رنگین اون کی طرح اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں بھی آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں کہ پہاڑ بھربری ریت کے ڈھیر ہو جائیں گے ایسے جیسے ریت کے ذرے ہوتے ہیں نا اس طرح سے پاؤڈر بن جائے گا جیسے اوپر سے کوئی چیز نیچے گرے تو کیسے کرچی کرچی ہو جاتی ہے تو پہاڑوں کو بھی اس طرح اٹھا کے ایسی چوٹ دی جائے گی اتنی زور سے دے مارا جائے گا کہ وہ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے تم سمجھتے ہو یہ جمے ہوئے ہیں تم سمجھتے ہو یہ بہت مضبوط ہے ان کو کوئی نہیں توڑ سکتا یہ تو اڑنے لگ جائیں گے اور ہم سورہ نبا میں پڑھ چکے نا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ اور پہاڑ کیا ہوں گے چلائے جائیں گے چلا دیا جائے گا ان کو یعنی اتنے ذرہ ذرہ ہو جاتے ہیں تو ذرہ ذرہ جب کوئی چیز ہوتی تو کیا ہوتا ہے بکھر جاتی ہے نا ہوا میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کیونکہ انسان کے لیے تو چھوٹی سی چیز بھی اٹھا کے اس کو بکھیر دینا انتہائی مشکل کام ہے اور اللہ تعالیٰ تمام پہاڑوں کو زمین پر جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کو اکھاڑے گا اور ان کا ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا سورہ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پھر غبار کی طرح اڑائے جائیں گے پاؤڈر بن جائے گا ان کا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا پھر چھوڑ دے گا اس کو ہموار چٹیل ہاں کی ضمیر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پہاڑ کی طرف ہی جا رہی ہے کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ کیسا کر دے گا ہموار چٹیل میدان بالکل یعنی ایسے فلیٹ کر دے گا اس طرح سے زمین پہاڑوں کو کر دے گا کہ وہ بالکل ابھی تو اونچے نظر آتے ہیں نا بالکل فلیٹ ہو جائیں گے اور دوسری ہاں کی ضمیر اگر زمین کی طرف لی جائے تو فیذروہا پھر چھوڑ دے گا زمین کو کیسا چٹیل ہموار بالکل ایسے جیسے پانی کی سطح ہوتی ہے نا کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی بالکل یعنی سموتھ بالکل نہ کوئی ٹیلا ہوگا نہ کوئی پہاڑ ہوگا और ना कोई गहराई होगी। और ये भी देखें, इसके अंदर माना आ जाता है कि इसमें कोई जानदार बचेगा ही नहीं। ये जो अभी आपको ऊंची नीची चीज़ें नज़र आती हैं, कहीं दरख्त नज़र आते हैं, कहीं गढ़े नज़र आते हैं, कहीं समंदरों की गहराइयां नज़र आती हैं, कहीं पहाड़ों की चोटियां नज़र आती हैं, कहीं मकान नज़र आते हैं, कहीं बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, तो ये सब फ्लैट हो जाएगा, सब हमवार हो जाएगा। कहीं कोई जानदार नज़र आते हैं, कहाँ चले जाएंगे सब। सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़मीन पर कोई जानदार भी नहीं छोड़ेगा, कोई चलने वाला नहीं होगा। इतने जानदार, इतने हशरात, इतने चरिंद परिंद, इतने इंसान, सब फ्लैट कर दिए जाएंगे। ला तरा फीहा अइवजा वला अमता, इसमें कोई ना टेढ़पन होगा, ना कोई ऊंची जगह होगी, ना कोई जगह बुलंद होगी, ना टीला होगा कोई, ना समंदरों की गहराइयां होंगी। यानी ऊंची नीचे जगह होगी ही नहीं। اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ اس میں بھی ہے نا کہ جب زمین اتنی شدت سے ہلائی جائے گی وہ سارے بوجھ نکال دے گی اپنے، بالکل خالی ہو جائے گی اور اس کے بعد بالکل فلیٹ ہو جائے گی، اس کو چمڑے کی شکل میں کھینچا جائے گا۔ اور اسی نے تو حشر کا میدان بننا ہے نا، اسی لیے یہ کہا گیا۔ دیکھیں کہیں پہاڑ ہو یا کہیں گہرائی ہو تو کیا ہوگا، کوئی جا کے چھپ سکتا ہے، کوئی ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ تو کوئی بھی ایسی جگہ نہیں کہ کوئی جا کے کہیں پہ ٹھکانہ بنا لے اپنا۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ فرمایا ہے کہ دیکھو سارے نشیب و فراز ختم ہو جائیں گے، یہ کھینچ کے چمڑے کی طرح کھینچ کے فلیٹ کر دی جائے گی، اور لوگوں کے پاس صرف دو قدم رکھنے کی جگہ ہوگی۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز چمکدار خاکستری رنگ کی صاف ستھری ٹکیا جیسی زمین پر سب اکٹھے ہو جائیں گے، جس پر کسی کے لیے کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا، نہ اونچائی نہ نیچائی۔ یہ ہے جگہ جہاں پہ سب نے جمع ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی بات کی، اب زمین کی بات کی، سب ہموار ہو گیا، اب حشر کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے کہ اب آگے کیا ہوتا ہے، اب حساب کتاب کا وقت آ گیا۔ پہلے یہ تیار کر لیا میدان، اسمبلی جہاں پہ لوگوں کی ہونی ہے، سارے انسانوں کو جہاں پہ جمع ہونا ہے۔ اب آگے صورتحال بتائی کہ اب انسانوں پہ کیا گزرے گی، پہاڑوں پہ تو یہ گزری، زمین ایسے فلیٹ کر دی گئی، انسانوں کا اب کیا ہوگا۔ یوم اذن یتبعون الداعی، وہ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، ایک پکارنے والے کے پیچھے، ایک بلانے والے کے پیچھے۔ سوچیں کہ کیا حال ہوگا انسان کا۔ میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا، سب لوگ اٹھا کے چٹیل میدان میں کھڑے کر دیے جائیں گے، اور جب قبروں سے اٹھیں گے تو بھاگیں گے کس کے پیچھے، ایک پکارنے والے کے۔ لا عوج له، نہیں کوئی ٹیڑھ پن اس سے، ٹیڑھ پن مطلب عوج کا مطلب یہاں پہ کیا، یعنی اس سے کوئی ہٹے گا نہیں۔ ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے اسٹریٹ لائن اور ایک ہوتا ہے ادھر سے ادھر نکل جانا، ٹیڑھا ہو جانا، تو کوئی ٹیڑھا نہیں جائے گا، سب بالکل اسٹریٹ اس کے پیچھے، سب اس کے پیچھے لگے ہوں گے۔ قبروں سے اٹھتے ہی اس کے پیچھے بھاگنے لگیں گے۔ اور پکارنے والے سے مراد یہاں پہ اسرافیل علیہ السلام ہے، جو سور میں پھونک ماریں گے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم بھی کہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز زندہ ہو جائے گی اور بھاگنے لگے گی آواز کی طرف۔ اور देखें कोई, सब स्ट्रेट होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट उसके पीछे चल रहे होंगे, कोई इधर उधर नहीं होगा, कोई खिलाफ वर्जी करेगा ही नहीं, किसी की मिजाल नहीं होगी। देखें दुनिया में तो कोई दाई बुलाए तो लोग सुनते ही नहीं है बात को, लोगों के पास हजार बहाने होते हैं। कोई दीन का दाई कुछ भी बताए तो देखें लोगों के कितने सारे उजर होते हैं। यहाँ पे कोई उजर नहीं दे सकेगा कि मैं नहीं आ सकता, अभी ठहरे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आऊंगा अपनी मर्जी से आऊंगा, नहीं, सब तीर की तरह सीधे होके भाग रहे होंगे पीछे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे मंजर कशी की है उस वक्त की, जो किस कदर हैबत का वक्त होगा, कि वखाशियातिल अस्वात, जो आवाजें होंगी वो दब जाएंगी ले रहमान, रहमान के लिए। और देखें कैसी मंजर कशी वहां की गई है, कि उस असेंबली हॉल में, उस असेंबली की जगह में, फला तस्माउ इल्ला हमसा, तुम नहीं सुनोगे मगर धीमी आवाज। ये दिन हमारे लिए आसान कर देना। तो सब लोग जब चटियल मैदान में खड़े किए जाएंगे ना, लोग इतने सहमे हुए होंगे, ऐसा दिन तो कभी देखा ही नहीं था। इतनी दहशत है, इतना खौफ है, मर्जी किसी ने की नहीं चल रही, हर एक बस जबरन चला चला जा रहा है, कोई डंडा नहीं उसके सर पे लेके खड़ा हुआ, बस कोई, हर कोई चला चला जा रहा है, भागते जा रहे हैं एक ही तरफ। और देखें लोग जब जमा होते हैं ना किसी जगह, आप किसी पार्टी में सुने या आप किसी जगह पे भी देखें, खामोश होके कभी देखे सुने क्या आवाज़ें आ रही होती हैं, इतनी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बोल चाल, बोल चाल की एक शोर मचा होता है, सब आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे होते हैं, लेकिन सबकी आवाज़ें मिलके एक शोर बना होता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी शोर नहीं होगा, इतनी खलकत होगी, इस कदर मखलूक है, लेकिन शोर कोई नहीं है, क्योंकि बात करने की हिम्मत ही किसी को नहीं है ना। ये जो पीछे हमने पढ़ा था ना कि वो पूछेंगे उठ के कि हम कितने दिन रहे, और ये वक्तन फवक्तन कभी कभार कोई बात एक दूसरे से पूछ लेंगे, अदरवाइज बिल्कुल दब जाएंगी आवाजें, कोई आवाज होगी नहीं। जब लोग इकट्ठे होते हैं जरूर आवाज होती है, अब देखिए कुछ ना कुछ आवाज होती है ना, और कुछ नहीं हिलजुल की आवाज होती है, और कुछ नहीं है तो कुछ पूछने की, कुछ कहने की, कोई रोने धोने की, कोई चीखने की कि हाय ये क्या हो गया, कुछ कोई तो आवाज हो, वरना सीने से ही आवाज आने लगती है, सांस की आवाज आने लगती है, मगर यहाँ पे कोई भी आवाज नहीं होगी, बिल्कुल बेहरकत, सब हिलजुल। जब तक वहां पे पहुंचे नहीं तब तक ही हिलजुल है, उसके बाद जब वहां पहुंच जाएंगे बिल्कुल बेहरकत हो जाएंगे, किस कदर अजीब सी खामोशी होगी, पिन ड्रॉप साइलेंस। वो कैसा माहौल होगा जिसमें ला तस्माउ इल्ला हमसा, तुम नहीं सुनोगे मगर धीमी आवाज। और जो मुफसरीन बताते हैं कि ये धीमी आवाज़ किसकी होगी, हम्स क्या होगी, बहुत हल्की आवाज़, कदमों की चाप जिसको कहते हैं, कहते हैं कदमों की चाप सुनाई दी, यानी बिल्कुल आहट कदमों की। अब ज़ाहिर चल के आ रहे हैं तो जो चलने की आवाज़ है ना, इसके अलावा हल्की कदमों की आहट के अलावा कोई बात नहीं होगी। जब जमा हो जाएंगे किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी। दुनिया में तो बात बेबात बहसें किया करते थे ना, और कहते थे हम ये कह देंगे, हम वहाँ पे वो कह देंगे, हम फलां कहेंगे, मैं तो ऐसे कहूंगी, वहां पे किसी को जरूरत ही नहीं होगी कि कुछ बोले, इतना दहशतनाक मंजर होगा, वहां पे किसकी मिजाल है कि इधर उधर की मारने लगे। और देखिए आज के दिन कैसा हुक्म मान रहे हैं, तीर की तरह सीधे होके कैसे आवाज देने वाले के पीछे जा रहे हैं। काश यही काम दुनिया में किया होता ना, तो इंसान के लिए आखरत का बहुत बड़ा फायदा होता। लेकिन इंसान दुनिया में इस तरह कभी नहीं तीर की तरह सीधा होके भागता, वहां पे जरूर भागेगा। वहां पे तो एक आवाज के पीछे सब भाग रहे होंगे, कोई पूछेगा नहीं क्यों जाऊं। और ये जगह जहाँ पे ये खड़े होंगे, जहाँ पे हशर किया जाएगा, बिल्कुल डार्क जगह होगी, अंधेरी जगह होगी। ओके, आसमान लपेट लिया गया है, सितारे झड़ गए, सूरज चांद मिट गए। जिस वक्त हशर हो रहा होगा ना, उस वक्त। और हम ये भी पढ़ते हैं सूरज सवा नीजे के ऊपर होगा। ये मुख्तलिफ औकात हो सकते हैं, क्योंकि हशर का दिन बहुत लंबा है, बहुत तवील है, उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। तो इस मैदान में सारी मखलूक अब जमा हो गई है। अल्लाह ताला ने पहले इस मैदान को तैयार फरमाया, पहाड़ तोड़ फोड़ दिए, रेजा रेजा कर दिए। अब जो पहाड़ टूट गए तो घर कहाँ सलामत रहेंगे और आपकी ये बिल्डिंगें कहाँ सलामत रहेंगी। और उसके बाद ज़मीन को भी बिल्कुल फ्लैट कर दिया, उसके बाद लोगों को यहाँ पे जमा कर दिया। और जब सारी मखलूक जमा होगी, ऐसा सन्नाटा होगा, किसके लिए? ले रहमान, रहमान के अदब की वजह से, खौफ की वजह से। सिर्फ पैरों की चाप सुनाई देगी। अब इस दिन इंसान चाहेगा कि मेरी कोई सिफारिश करे, कोई यहाँ से निकाले। तो यौम इदिल्ला तन्फाउ शफ़ातु इल्ला मन अदिना लहु रहमान। तो उस दिन किसी की शिफात फ़ायदा देगी ही नहीं, मगर जिसके लिए रहमान इजाज़त दे, नंबर वन शर्त। और रदिया लहु कौलन, और पसंद कर ले इसके लिए बात को, वो इसके लिए बात करने को पसंद करे और उसको इजाज़त दे, तब वो बोल सकता। वैसे ही वहाँ पे आवाज़ें तो वैसे ही किसी को निकालने की आवाज़ तो मिजाल ही नहीं होगी, कोई बोलेगा क्या? आहट के सिवा कोई आवाज़ होगी ही नहीं पूरे मैदान में। कहीं कहीं को खुसर पुसर से ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी। और ऐसे में कोई किसी की सिफारिश करने खड़ा हो जाए, ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ उनकी जरूरत हो सकती है जिनको अल्लाह ताला का इज़न हो, जिनको अल्लाह ताला इजाज़त दे और जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो गया हो, जिसकी बात से वो राज़ी हो, जिसके बात करने से वो राज़ी हो। सूरह मरियम में भी हम पढ़ चुके हैं ना, ला यमलिकून शफात इल्ला मन इत्तखज़ इंद रहमान अहदा। इनके सिवा किसी को शिफात करने का इख्तियार नहीं होगा मगर जिन्होंने अल्लाह से कोई अहद ले रखा। और सूरह तौहा में भी आगे आता है, और सूरह अंबिया में भी आता है, वला यशफ़ाउना इल्ला लिमन इर्तदा। और वो सिर्फ उसी की शिफात करेंगे जिससे वो राज़ी है। जिससे यानी कौन राज़ी है? अल्लाह ताला राज़ी है। सूरह मुदस्सिर में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन मुजरिमों को शिफात करने वालों की शिफात नफ़ा ना पहुँचाएगी। यानी इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला है कि हर एक तो सिफारिश कर भी नहीं सकेगा। सिफारिश का हक किसको है? शिफात होती क्या है? यानी गुनाहों और बंदों के आपस के जरायम के बारे में दरगुजर करने का सवाल करना। गुनाह के लिए जो गुनाह बंदों से हो चुके हैं, जो जुर्म हो चुके हैं, हद से बड़े थे वो, उनके बारे में दरगुजर करने का सवाल। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ऐसी जगह जहां पे कोई नहीं बोल सकता, वहां पे ये सोचा जाए कि कोई बोल के और किसी के लिए सिफारिश करे। ये जुर्रत वही कर सकता है जिसको रहमान इजाजत दे कहे कि तुम ठीक है, तुम भाई सिफारिश करो, अदरवाइज किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो बोले। अब ऐसी जगह के अंदर इंसान की अपनी ऊपर भी डिपेंड करता है कि जिसकी सिफारिश की जाए वो उस लायक भी है कि उसकी सिफारिश की जाए। देखिए, चोर उचक्कों की कोई सिफारिश करे तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? किसी ने चोरी की और उसके लिए कोई आके सिफारिश करे, या किसी ने कत्ल किया है, किसी ने कोई ऐसा जुर्म किया है और वो कहे कि भाई इसको छोड़ दिया जाए, तो उस बंदे की अपनी क्रेडिबिलिटी खराब होती है ना जो सिफारिश करेगा। इसलिए कोई भी ऐसे लोगों की सिफारिश नहीं करेगा और अपनी मर्जी से नहीं करेगा, बल्कि क्या है, वो भी अल्लाह ताला का इज़न होगा तभी सिफारिश कर सकेगा। अल्लाह के इज़न के बगैर किसी को शिफात की इजाज़त नहीं है। और शिफात की भी 5 किस्में हैं। पहली शिफात तो वो है ना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है। ये कौन सी है? यह हशर के मैदान में जब खौफ और दहशत होगी तो उस वक़्त इसलिए वो शिफात करेंगे, सिफारिश किस चीज़ की करेंगे कि हिसाब किताब जल्दी शुरू कर लिया जाए, क्योंकि लोग बड़ी ही मुसीबत में होंगे, बड़ी मुशक्कत में होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह ताला की हमदो सना करेंगे, सजदे में पड़े रहेंगे, अल्लाह ताला उस वक़्त ही उनको सुझाएंगे कि कौन सी हमदो सना करनी, और उसके बाद जब अल्लाह ताला उनको इजाज़त देंगे कि अब आप मांगे, तो वो कहेंगे कि अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू किया जाए। तो पहली तो शिफात वो है। दूसरी, कहा जाता है कि मुसलमानों की एक ग्रोह को बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करने के लिए आप शिफात करेंगे। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है कि बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में इनको दाखिल किया जाए, एक सब को नहीं, एक ग्रुप को। फिर तीसरी कौन सी है? तीसरी ये है कि जो मुसलमान दोज़ख के मुस्तहिक हो चुके हैं उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे कि या अल्लाह इनको दोज़ख से बचा लिया जाए, हालांकि वो मुस्तहिक हो चुके हैं दोज़ख के। ये ऐसी शिफात अंबिया भी करेंगे, सालहीन को भी ऐसी शिफात की इजाज़त मिलेगी। फिर इसी तरह चौथी शिफात कौन सी है? जो गुनाहगार मुसलमान दोज़ख में दाखिल कर दिए गए तो उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे कि इनको दोज़ख से निकाला जाए, और फिर मलाइका भी शिफात करेंगे। मुसलमान और भी आपको पता है कि कई तरह के लोगों को शिफात की इजाज़त होगी, कोई हाफिज़ कुरान है, कोई शहीद है, फिर इस तरह से। तो जिसमें उस हदीस में आपने पहले पढ़ा भी है कि ऐसी वो शिफात होगी कि जिसमें पहले तो कहा जाएगा कि इतने ज़र्रे के बराबर, यानी इतने बकदर एक यानी शुरू जब होगी कि एक मिसकाल ईमान जिसके पास है उसको निकाल लिया जाए। फिर कहा जाएगा जिसके दिल में आधा मिसकाल ईमान है, ये शक्ल एक बोझ है, एक यानी एक वज़न है, आधा मिसकाल ईमान है उसे भी निकाल लिया जाए। फिर जिसके दिल में एक ज़र्रे के बराबर ईमान हो उसको भी निकाल लिया जाए। ये अभी फौरन फौरन नहीं हो रहा, ये याद रखे। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े रहेंगे, बहुत अल्लाह ताला की हमदो सना करेंगे, और फिर जब अल्लाह ताला का इज़न होगा तब वो सजदे से सर उठाएंगे अल्लाह ताला के हुक्म से। फिर अल्लाह ताला उनको पूछेंगे और फिर वो सवाल करेंगे शिफात का, फिर वो जाएंगे, फिर जहन्नुम से निकाल के लाएंगे। फिर पहले एक मिसकाल के बराबर ईमान वाले को लेकर आए, फिर उसके बाद फिर सजदे में पड़े रहे, फिर कई अरसा गुजर गया। अब इस अरसे में वो कहाँ है? वो जहन्नमी तो जहन्नुम में जल ही रहे हैं ना। फिर उसके बाद सर उठाएंगे जब अल्लाह ताला हुक्म देंगे, फिर वो इजाज़त दिए जाएंगे कि लेकर आ जाए। ये ऐसे लोगों को निकाल के जो जिनमें आधा मिसकाल ईमान हो, फिर उनको भी लेकर आएंगे। अब देखिए जो अब मैं बोलने में तो ये कह रही हूँ ना कि उसके बाद एक जर्रे के बराबर ईमान हो उसको भी निकाल लाएंगे, उसके बाद एक उससे भी जो कम ईमान का वाला हो उसको भी निकाल लाएंगे, फिर जिसने सारी ज़िंदगी में एक दफ़ा इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो उसको भी निकाल लाएंगे। तो उसका मतलब ये नहीं कि फ़ौरन फ़ौरन नहीं हो रहा है एक के बाद एक, नहीं नहीं बहुत बहुत अरसे तक अल्लाह ताला की हम्द सना करते रहेंगे और फिर अल्लाह की इजाज़त से लौटेंगे, फिर ये ही होगा। तो चार मरतबा कहा जाता है कि ये होगा, अल्लाह ताला फिर हर दफ़ा कहेंगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएं, आप मांगें, आपकी बात सुनी जाएगी, आप शिफात करें, आपकी शिफात कबूल की जाएगी, फिर हर हद मुकरर कर दी जाएगी कि आप इसको निकाल के जन्नत में ले जा सकते हैं, फिर आप उनको जन्नत में पहुंचा के फिर वापस आएंगे, फिर इसी तरह होगा। तो ये मतलब सुनने में तो आपको शायद ऐसे लग रहा हो कि हाँ भाई फौरन फौरन वो जाएंगे बस निकाल के, ठीक है शिफात तो उनकी हुई, मगर आप ये नहीं नोट करते ना कि कितना कितना अरसा गुजर गया और वो उतनी देर तो वो जल रहे हैं ना। हाँ फिर ये भी कहा जाता है कि अहले जन्नत की दर्जात की बुलंदी के लिए भी शिफात की जाइए। तो बात यह है कि सिफारिश होगी मगर किसको इजाज़त मिलेगी, जिसको रब इजाज़त दे। अपनी मर्जियों से कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। देखिए इसके लिए आपको बहुत वाज़े एक दलील देती हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या हाल होगा, अपने बाप के लिए वो चाहेंगे ना कि मेरे बाप को आज ये जो बिज्जू बना दिया गया है तो इनको माफ़ कर दिया जाए जहन्नम से, लेकिन क्या उनकी बात सुनी जाएगी। कई दफ़ा मैंने आपको बताया ना कि वो कीचड़ में लुथड़े हुए एक बिज्जू की शक्ल में नज़र आएंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, क्योंकि वो पहले इंसान की शक्ल में थे, मगर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मुझे तो हया आती है इस बात से कि मेरा बाप और जहन्नुम में जा रहा है, तो अल्लाह ताला उनको बिज्जू की शक्ल दे देंगे इनके बाप को। यानी अल्लाह ताला ये नहीं कहेंगे कि ठीक है तुमने क्या दिया इब्राहीम, तो तुम तो मेरे खलील हो तो इसलिए तुम्हारे बाप को कैसे जहन्नुम में डाला जा सकता, नहीं। तो इससे क्या पता चलता है, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे उसी को जहन्नुम से निकाला जाएगा, या उसी के लिए शिफात कबूल की जाएगी, या उसी के लिए इजाज़त दी जाएगी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नहीं निकाल के ला सकते कि जन्नत में उनको दाखिल करवा दें, अल्लाह के नबी हैं। लेकिन देखें यहाँ से हमें ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हर कोई शिफात के काबिल नहीं होगा, मगर सिवाय वो, एक तो सबसे बड़ी बात ये जिसको अल्लाह ताला सिफारिश करने की इजाज़त दे, और दूसरी बड़ी बात वो कि जिसके लिए अल्लाह चाहेगा उसी के हक में कबूल होगी शिफात। कि अगर किसी ने कहते रहना तो कहता रहे वो, लेकिन जब अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करें तो कोई फ़ायदा तो नहीं है। तो ये इंसान को समझ लेना चाहिए कि जिसने भी इखलास से दिल से ला इलाहा किया कहा हो, इसको समझा हो दिल से, इसकी वजह से उसकी शिफात हो पाएगी। वरना वैसे तो फरिश्ते भी शिफात करेंगे, इंसान भी शिफात करेंगे, मगर किसी की शिफात काम नहीं आने वाली जब तक कि जिसके कौल से अल्लाह नाराज़ी हो जाए, जिसकी बात से अल्लाह राज़ी हो, सिर्फ उसकी शिफात काम आएगी, उसके लिए शिफात काम आएगी। और आप ये देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया ना कि जब तुम मुअज़्ज़िन को अज़ान देते हुए सुनो तो वही कलिमात दोहराओ, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो, क्योंकि जो मुझ पर एक दफ़ा दरूद पढ़ता है अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें भेजता है, फिर मेरे लिए अल्लाह से वसीले का सवाल करो, क्योंकि वसीला जन्नत में एक बुलंद मकाम है जो अल्लाह के बंदों में से किसी एक को मिलेगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि वो बंदा मैं हूँ, सो जिसने मेरे लिए वसीले का सवाल किया इसके लिए मेरी शिफात हलाल हो जाएगी। ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में है कि क़यामत के दिन मेरी शिफात के साथ सबसे ज़्यादा कामयाब वो शख्स होगा जिसने इखलास कल्ब के साथ, यानी पूरे दिल के साथ, यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। अब आप देखिए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बगैर किसी की शिफात नहीं कबूल होगी, किसी के लिए नहीं शिफात कबूल होगी। और हमने सूरह नबा में भी पढ़ा ना, यौम यकूमु रूहु वल मलाइका तो सफ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अधिन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। अल्लाह ताला उसी की बात, वही बात कर सकेगा, उसी की बात कबूल होगी जिसको रहमान ने इज़न दिया और जो दुरुस्त बात कहे, ठीक ठीक बात कहे, ऐसे ही बेकार की इधर उधर की नहीं कहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के लिए एक दुआ है जो ज़रूर कबूल की जाती है, और हर नबी ने जल्दी की कि इस दुआ को दुनिया में ही मांग लिया और मैंने अपनी दुआ को अपनी उम्मत की शिफात के लिए संभाल लिया। अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरी शिफात उम्मत के हर उस आदमी के लिए होगी जो इस हाल में मर गया, यानी उसकी मौत इस हाल में हुई है, नहीं कि ज़िंदगी में एक दफ़ा कहा था उसके बाद तो अल्लाह माफ़ करे कि वो बदल गए, वो नहीं, पलटने वाले के नहीं, मुर्तद के लिए नहीं, बल्कि जो इस हाल में मरा कि अल्लाह के साथ उसने किसी को शरीक ना ठहराया, यानी मरते दम तक उसने शिर्क नहीं किया, मौत उसकी तौहीद पर ही आई हो, उसके लिए हो सकती है। तो ये एक शर्त है इस चीज़ की। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आया, ठीक है शिफात भी होगी, ठीक है इंसानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुसलमान है उनको शिफात मिल भी सकती है, मगर देखें एक बात याद रखें, जब इंसान जहन्नुम में जल रहा होगा, देखिए मुश्किल का तो एक लम्हा भी कैसे लगता है, सदियां लगता है ना, कहते हैं हमारे पर तो जिस जो मुश्किल में है उसके लिए तो एक रात भी सदी के बराबर है, कहते हैं हमारे तो जैसे दुख के अंदर सदियां गुजर गई, जो तकलीफ़ में होता है उसको थोड़ा वक्त भी ऐसे लगता है कितना तवील है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। आप देखें बीमारी की एक रात भी ऐसे लगती है गुजर ही नहीं रही, हालांकि वही रात आप सो के गुजारते हैं कितनी जल्दी गुजर जाती, लेकिन आप कभी याद करें कि कभी बीमार हुए हों, बुखार में करा रहे हों, पता चले सुबह डॉक्टर के जा सकते हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता, वो रात कैसे गुजरती है। और कहाँ ये कि जहन्नुम में चल रहे हो जिससे ज़्यादा सख्त तकलीफ़ दे चीज़ कोई नहीं हो सकती, और फिर इंसान कहे कोई बात नहीं शिफात तो हो ही जाएगी, हम तो मुसलमान हैं हमारी तो शिफात हो ही जानी है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है जो मर्ज़ी करते रहो, कैसे कह सकते हैं ये। तकलीफ़ की ये थोड़ी सी जिंदगी 50-60 साल की 70 साल की तो गुजरती नहीं है, उसमें भी हालांकि कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है, वो तकलीफ़ क्या तकलीफ़ जिसकी रात भी गुजर जाए और दिन भी कट जाए, असल तकलीफ़ तो वो है कि एक पल भी चैन ना हो, एक पल भी ना, और उसके अंदर इतना वक्त गुजारना कि शिफात की इजाज़त मिलेगी, फिर वो शिफात करेंगे, फिर कहीं जाके बचत होगी, तो इसके ऊपर कितने आराम से कैसे बैठ सकते हैं कि कहें हम कि नहीं शिफात हो जानी है इसलिए जो मर्ज़ी करते रहो। तो इस चीज़ के ऊपर रह कर के हाँ ये है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी शिफात के काबिल बनाए कि जन्नत में भी दर्जात की बुलंदी की शिफात कर सकें, या जहन्नुम से बच के जन्नत में दाखिल हो सकें, ये तो बात एक अलग है, मगर ये सोचना जो मुसलमान अक्सर सोचते हैं तो कोई बात नहीं है जहन्नुम में चले भी गए तो फिर तो वो तो यहूदियों वाली ही बात हो गई ना, कोई नहीं जहन्नुम में गए भी थोड़े दिन रह के तो उसके बाद हम चले जाएंगे जन्नत में, तो हम कैसे जब जहन्नुम की सारी बातें पढ़ते हैं कैसे ठंडे पेटों ये बात कह सकते हैं कि जैसे मसला ही कोई नहीं। तो शिफात जिसको इजाजत होगी वो कर सकेगा, और तब नफा देगी जब इंसान के अमाल भी इस काबिल हों कि उसको शिफात की जाए, यानी उसने अपने रब को पहचाना तो हो, तौहीद पे तो हो। और जितने ज्यादा आपके नेक अमाल होंगे उतनी जल्दी शिफात का चांस है ना, जितने गुनाह कम होंगे उतनी जल्दी शिफात का चांस है ना, कि भाई ठीक है इस बंदे ने, मसलन कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे कि अपनी ज़िंदगी को रब के अहकामात के मुताबिक ढाला, इन्होंने कोशिश की, मत थोड़ी जो कमी बेशी रह गई थी तो अब शिफात की जाएगी कि अल्लाह इसको पूरा कर दे, या अल्लाह ताला इनकी कमियों को अब माफ़ कर दे, या अल्लाह ताला इनकी ना इनको सजा दे और इनको ऐसे ही जन्नत में भेज दे बगैर जहन्नुम के नज़ारा करवाए भी। तो वो एक बात हो गई, मगर जिसने सारी ज़िंदगी ना रब को ना पहचाना ना जाना, बस कलमा पढ़ के बैठ गए, ठीक है दिल से तो कलमा पढ़ा हुआ, तो उतनी देर लगेगी निकलने में। हम कहते हैं इमिग्रेशन के पास खड़े होते हैं ना, कहते हैं जल्दी बारी आ जाए, जहाज़ में से निकलने लगते हैं, कहते हैं हाँ सबसे पहले आगे लाइन में मैं लग जाऊँ, कितनी जल्दियाँ होती हैं हमें, हालांकि कोई जहन्नुम में नहीं पड़े हुए। एयरपोर्ट से निकलना है, कहते हैं जल्दी निकल जाए हम, कोई भी ऐसी जगह होती है ना ज़रा सी भी मुश्किल जगह, कहते जल्दी निकले। और जहन्नुम के लिए इस बात पे इकतफा किया हुआ है कि कभी भी निकल गए आखिर तो निकल ही जाएंगे ना, इस पे मुतमईन है। अगर इंसान ये सोचता है ना तो बड़े ही वो अभी तक कुरान को नहीं समझा, जिसको समझ आ जाए ना जहन्नुम की, वो तो एक लम्हे के लिए भी नहीं गवारा कर सकता कि अल्लाह एक लम्हे के लिए भी ना मैं जहन्नुम में जाऊं। वो तो ये कहता है अल्लाह जहन्नुम की हवा भी ना लगे, उसके करीब भी ना ले जाना हमें, खौफनाक मंजर भी इंसान नहीं देख सकता, वो भी किस कदर तकलीफ दे होता है, खौफनाक मंजर ही देख लें आप तो कई दिन जो है ना बेचैनी रहती है, रात को नींद नहीं आती, हालांकि कोई खौफनाक सीन देखा होता है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, यालमु मा बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम वला युहीतूना बिही इल्मा। इसी से मिलती जुलती आयत आयत आयतल कुर्सी में भी इसी से मिलती जुलती बात हम पढ़ चुके हैं ना, वो जानता है जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है। अब इल्म की बात यहाँ पे कहाँ आ गई, शिफात की बात हो रही थी। असल बात यह है, देखिए शिफात का भी इल्म के साथ ताल्लुक है। अगर इल्म किसी का थोड़ा हो ना तो उसके सामने किसी की भी सिफारिश की जाए तो ठीक है चल जाएगी चल जाएगी। कैसे? मसलन मिसाल के तौर पे कोई बादशाह है, उसके पास उतना इल्म ही नहीं है कि वो ये जान सके कि कौन इंसान फलां गांव में फलां मोहल्ले में, चाहे उसी के बादशाहत में रह रहा है लेकिन फलां मोहल्ले में फलां आदमी उसके साथ क्या मामला हुआ, क्या वो बेकसूर है या कसूरवार है, आंखों देखा हाल तो नहीं जानता ना। अब वो क्या करता है जब ये मामला उसके सामने आता है, उसकी अदालत में पेश होता है तो क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके सामने आएगी उसी के सहारे वो फैसला करेगा ना। और फिर अगर किसी ने कोई सच्ची झूठी कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दी और उसके बाद किसी ने सिफारिश कर दी कि नहीं जी भाई इसको माफ़ कर दें ये तो बड़ा ही मिस्कीन है, तो चूंकि वो इल्म ही नहीं रखता ना, फर्स्ट हैंड नॉलेज तो है नहीं कि आंखों देखा नहीं है उसने, तो अब वो किसी की झूठी सिफारिश भी, किसी चोर के लिए भी सिफारिश शायद कबूल कर ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि ये कसूरवार है या नहीं, उसका इल्म इतना है ही नहीं, इसलिए वो किसी की गलत सिफारिश भी कबूल कर सकता है। अब जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, हम नहीं जानते कि इस वक्त अफ्रीका के फलां जंगल में फलां लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, मीडिया के थ्रू, उस में भी हम मीडिया पे इतने डिपेंडेंट होते हैं कि वो जो सच झूठ जो मर्जी हमें दिखा दे हम यकीन कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला का मामला ऐसा नहीं है, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो खुद हर चीज़ पर गवाह है, गवाह यानी खुद मशहूर, वो खुद ऐसा है कि उसके सामने किसी के लिए, किसी की शहादत की जो शहादतें होंगी वो तो इंसान के आगे हुज्जत कायम करने के लिए होंगी, अदरवाइज अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है कि वो फरिश्तों को बुला के पूछे या नामा आमाल हाथ में दे, उसको तो पता ही है। ये तो इंसान के लिए कहा जाएगा कि वो आके गवाहियाँ देंगे फरिश्ते, भाई इसने ये किया, आमाल नामे में भी उसके सामने आ जाएगा। मैंने ये कि इंसान की अपनी हुज्जत तमाम करने के लिए, उसके एक्सक्यूजेस ख़त्म करने के लिए, अदरवाइज अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है कि बुला बुला के पूछे इसने क्या किया है, या इसकी निकियाँ कितनी हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, या इसके नामा आमाल में क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाओ। नहीं, तो सब चीज़ जो भी वो कर रहा था सारी ज़िंदगी, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर गवाह था, खुद देख रहा था, खुद हाजिर था। तो इंसान के इल्म में और अल्लाह ताला के इल्म में बड़ा फ़र्क है। तो वो तो चूंकि हर चीज़ का खुद गवाह है, इसलिए उसके हाँ कोई गलत सिफारिश हो ही नहीं सकेगी, जैसे इंसानी दुनिया में सिफारिशें होती हैं। जो आगे को भी जानता है, पीछे को भी जानता है, क्या मतलब हुआ, माजी को भी अल्लाह ताला जानता है, हर वाक्य को माजी के। आप खुद को अगर देखें तो लास्ट ईयर मसलन इस टाइम पे एंड ऑफ जुलाई में आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे, आज की तारीख में आप इस वक्त किस काम में मशगूल थे, आप नहीं बता सकते। चलो पिछले साल की क्या बात, पिछले हफ्ते की अगर बात करें कि पिछले जुमे को आप इस टाइम पे क्या कर रही थी, नहीं जान सकते। क्या पढ़ रही थी, किस आयत पे पहुंची थी, सारे दिन में आपने क्या किया, नहीं बता सकते। तो हम तो अपने ही माजी को पूरी तरह नहीं जानते। हम बचपन में क्या थे, जिसने कोई बता दिया उसने बता दिया, हम खुद नहीं जानते हमारी क्या आदत थी, क्या अतवार थे, हम क्या क्या किया करते थे, बड़े बता देते हैं बस वही यकीन कर लिया। अपना माजी हम खुद भी नहीं जानते, और अल्लाह ताला माजी भी जानता है, हाल भी, मुस्तकबिल भी। ये टर्म्स जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की है ना, ये टर्म्स सिर्फ इंसानों के लिए हैं, अल्लाह ताला के लिए नहीं है। अल्लाह ताला के लिए कोई पास्ट पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर फ्यूचर नहीं, सब ही उसके लिए ऐसे ही है जैसे हमारे लिए प्रेजेंट है, हाल है, आज का दिन है। उसके लिए माजी भी ऐसे ही है, उसके लिए मुस्तकबिल भी ऐसे ही है। एक बड़ी ज़बरदस्त बात हारून याह्या की किताब में है कि जब हम किसी चीज़ पर नज़र डालते हैं तो फ़र्ज़ करें किसी मोड़ मुड़ने के बाद, जब आप मोड़ मोड़ रहे होते हैं, कोई भी टर्न लेते हैं, तो क्या होता है, जो आपके आगे सीन है ना, जो इलाका है, उसका थोड़ा हिस्सा हिस्सा आपके सामने आता है। हालांकि इलाका पूरा मौजूद है, मगर उसकी थोड़ा सा हिस्सा आप, एक थोड़ा सा एंगल आपको नज़र आता है। फिर आप जो जो मुड़ते जाते हैं, फिर पिक्चर और बनती जाती है, आगे बनती जाती है, और जब आप पूरे मुड़ जाते हैं तब सारा सीन आपके सामने आ जाता है, पिक्चर कंप्लीट हो जाती है ना। ये इंसान का हाल है, अल्लाह ताला के सामने सारी पिक्चर्स क्लियर हैं, सारी पिक्चर्स पूरी की पूरी उसके सामने हैं। इंसान के लिए जब वो मुड़ता है, यानी जब वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है पिक्चर सामने आती जाती है, मगर वक्त से पहले उसके सामने पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती। वो उतना ही सिर्फ देख रहा होता है, उतना ही जानता है जहाँ तक वो पहुँचा है, उससे आगे नहीं जानता। मसलन मिसाल के तौर पे, अब आप यहाँ से अगर न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं तो न्यूयॉर्क अभी आपके लिए पर्दा गायब में, फ्यूचर है, 2 घंटे बाद का फ्यूचर है, अभी आप उसकी पूरी पिक्चर नहीं देख पा रहे। जैसे जैसे करीब जाते जाएंगे पूरी पिक्चर कंप्लीट होती जाएगी। तो इंसान के लिए मुस्तकबिल एक बिल्कुल अंधेरा वार है। उसमें जितना भी झांकना चाहे, लोगों से पूछो, फलां से पूछो, मेरे फ्यूचर में क्या होना है, कोई नहीं बता सकता। जबकि अल्लाह ताला के लिए मुस्तकबिल भी ऐसे ही है जैसे आज है, वो मुस्तकबिल को भी ऐसे ही जानता है। कल जो लोगों ने क़यामत के दिन बातें करनी है, कम लबिस तुम, कितना रहे तुम, ये बातें एक एक डायलॉग अल्लाह ताला को आज मालूम है। कहेंगे लोग ऐसे, और फिर एक आदमी क्या करेगा, वो क्या कहेगा, फिर दूसरा क्या कहेगा, कि हशर के मैदान में कौन क्या बोलेगा, क्या कैफियात होंगी, लोग बातें क्या करेंगे आपस में, उठेंगे तो किस हालत में होंगे। ये सब तो मुस्तकबिल की बातें हैं ना, हमें आज बताई जा रही हैं उस रब की तरफ से जो मुस्तकबिल के तमाम हालात को जानने वाला है। अब देखें दूसरे एंगल से इसको, अगर हम देखें यालमु माबैना अयदीहिम वमा खल्फहुम, तो एक तो माजी मुस्तकबिल का भी हो गया, और दूसरे भी ये हो गया कि जो इंसान अपने आगे भेजता है वो उसको भी जानता है, और जो इंसान अपने आमाल के असरात छोड़ता है उनको भी जानता है। ठीक है, यानी जो उसने आगे भेज दिया, अल्लाह के यहाँ अमल करके भेज दिए, ज़िंदगी जैसी जैसी गुजार के भेज चुका है, उसका माजी बन चुका है, वो उसको भी जानता है, और जो अपने आमाल के असरात वो दुनिया में छोड़ के जा चुका है उसको भी जानता है। इसी तरह जो माल आगे भेजा, सदका किया आगे भेजा, वो उसको भी जानता है, जो माल वारसों के लिए रह गया उसको भी जानता है। तो वो हमारे बचपन को भी, हमारी जवानियों को भी, हमारे आने वाले बुढ़ापे को भी, तमाम हालात को जानने वाला है। और फिर अगर आप अपनी ज़ात से ज़रा ऊपर उठ के सोचें तो सिर्फ हमारी ज़ात के बारे में नहीं जानता, सारी कायनात के इंसानों के बारे में, और फिर सारी कायनात के जानदारों के बारे में और बेजानों के बारे में, सबका इल्म उस रब के पास है। वला युहीतुना बिही इल्मा, और नहीं वो इहादा कर सकते इसके इल्म का, कोई इंसान कोई जिन उसके इल्म का इहाता नहीं कर सकते, जान ही नहीं सकते उसका इल्म कैसा है। देखिए अल्लाह ताला तो जानता है जो हमारा इल्म है ना, सारे हमारे जो उलूम है उनको अल्लाह ताला तो जानता है, हम नहीं जान पाते, हम उसके इल्म का ही नहीं इहाता कर सकते उसका इल्म है कैसा, और जो उसके इल्म में चीज़ें हैं वो क्या हैं, उसका जो इल्म मखलूकात के बारे में है, उसका इल्म जो और अपनी जन्नत जहन्नुम के बारे में है, जो दुनिया के बारे में है, जो और कायनात के बारे में, हम कहाँ उसका अहाता कर सकते हैं, हम कहाँ वो जान सकते हैं। उसके इल्म का तो हाल ये है कि ज़मीन पे कोई पत्ता भी ऐसा नहीं गिरता जिसका हाल वो नहीं जानता, और हमारा हाल ये है, हम गिन भी नहीं सकते उन पत्तों को, उनका हाल जानना तो दूर की बात, गिन भी नहीं सकते। ज़रा आप देखेंगे ख़िज़ा में जो गिरे हुए पत्ते होते हैं, सिर्फ एक दरख्त के पत्ते देख लें तो आप एक दरख्त के पत्तों को भी गिन नहीं सकते, उनको उस ढेर को एक तरफ लगाते हैं, और कहाँ ये कि सारे दरख्तों के पत्तों का इल्म उसको है, ना सिर्फ गिनती है, एक एक का हाल मालूम है। ज़मीन के नीचे चले जाएं तो ज़मीन की तहों के अंदर जो एक दाना पड़ा हुआ है वो ये भी जानता है कि उस दाने पे क्या गुजर रही है। ज़मीन के नीचे रहने वाले कीड़ों पे क्या गुजर रही है। तो अल्लाह ताला इंसान को ये बता के क्या एहसास दिला रहे हैं कि सुनो, तुम हमारे इल्म में हो, तुम्हारे आमाल भी हमारे इल्म में हैं, तुम हमसे कोई छुपे हुए नहीं हो, हम तुम्हारे बारे में खूब जानते हैं। और जो खूब जानने वाला होता है वही सही फैसला कर सकता है, जिसके पास सेकंड हैंड नॉलेज होता है वो उससे सही फैसले नहीं हो सकते। इसीलिए अदालतों के अंदर देखे ना, गवाह लाए जाते हैं, फिर ये लाया जाता है, फिर भी कई बेगुनाहों को सजा हो जाती है और कई गुनाहगार छूट जाते हैं, क्योंकि जो जज है वो इंसान है ना, इंसान का इल्म महदूद है। और इस वजह से वो सही फैसले नहीं कभी भी कर सकता। सही फैसला वो ही कर सकता है जिसका इल्म लामहदूद है, और उसी ने ये कुरान हमें दिए और ये अहकामात हमें दिए, वो रब जिसके इल्म की इंतहा कोई नहीं। हमारा इल्म लिमिटेड, उसका इल्म बियॉन्ड लिमिट्स। और फिर क्या होगा उस दिन, وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ, और झुक जाएंगे चेहरे, आजी इख्तियार करेंगे चेहरे, किसके सामने, हय और कयूम के सामने, ज़िल्लत के साथ, शर्मिंदगी के मारे। ऐसी कैफियत होगी इंसान की कि जैसे मुजरिम होता है ना, मुजरिम को अदालत में पेश किया जाए तो उसकी हालत क्या होती है। तो ये तो वो सबसे बड़ी अदालत है, और आज वो रब को भी पहचान चुका, वो जिसके एहसानात तले दबा हुआ इंसान वो सामने है। तो सोचें कि कैसे इंसान, देखें दुनिया में भी किसी इंसान का छोटा सा एहसान हुआ आपके ऊपर, और फिर अगर किसी इंसान की शख्सियत मस्ख नहीं हुई, हाँ, तो क्या होता है, आप उसके खिलाफ काम करते रहे और एक दिन आप उसके सामने आजिज होके आ गए, तो अब क्या शर्मिंदगी का हाल क्या होगा। और ये तो वो रब है जिसके इतने एहसानात हैं, फिर उसकी नाफरमानी में ज़िंदगी गुजार के आ गए तो चेहरे तो शर्मिंदगी के मारे झुके ही होंगे ना। क्या इंसान सर उठा सकेगा, तमाम सर हय और कयूम के सामने झुके होंगे, और खौफ की वजह से भी झुके होंगे, इतना खौफ तारी होगा। देखिए इसी वजह से तो आवाज़ें दब जाएंगी ना। और इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अनतिल वजूह से क्या मुराद है, रुकू और सजूद में होंगे, लोग रुकू में और सजदों में होंगे। और फिर ये भी कहा जाता है कि अनतिल वजूह से मुराद है कि इंसान अपनी पेशानी, अपनी हथेलियां, अपने घुटने, अपने कदम सब कुछ टेक देगा, रब के सामने सजदा रेज हो जाएगा। और ये भी अनत का माना है जिल्लत, जिल्लत के साथ, खुशू के साथ, किसके सामने, हय और कयूम के सामने। और वो कयूम कैसे हैं, अल्लाह ताला कायम है अपनी मखलूक पर, अपनी तदबीर के एतबार से कायम है। और नंबर टू क्या बात है, अल्लाह ताला हर नफ्स के काम पर कायम है, निगरानी करने वाला। और नंबर थ्री क्या माना है, अल्लाह ताला दाइम है, हमेशा रहने वाला, इसको कभी जवाल नहीं आएगा, अब्दुलाबाद तक आएगा, रहेगा, कोई इंतहा नहीं है, हमेशा कायम है। तो ये तीनों माने कयूम के हैं यहाँ पे। और अल्लाह ताला ने फरमाया वक़द ख्वाब मन हमला जुल्म, और तहकीक नामुराद हो गया जिसने उठाया जुल्म। जो जुल्म करने वाला है वो उसकी उस दिन शामत है, वो बड़ा नामुराद हो गया। और जुल्म क्या चीज़ होती है, आपको जुल्म का माना भी बताया था ना एक दफ़ा, हकदार को उसका हक नहीं देना, ये है जुल्म। कहाँ कहाँ इंसान हक मार रहे हैं दूसरों का, और अल्लाह ताला ने तो इंसाफ करना है ना, उसने इंसाफ ये करना है कि हर हकदार को उसका हक अल्लाह ताला उस दिन दिलवाएगा, हत्ता कि जानवरों तक में। इंसानों की तो बात इंसानों की हो गई, इनको तो अकल भी है, इनका तो सवाल होगा ही होगा, जानवर तक में अगर किसी एक बकरी के सींग नहीं है और सींग वाली बकरी आके उसको सींग मारती है, अब वो बेचारी की बगैर सींगों के वो नहीं मार सकती, इस सींग वाली बकरी ने उसको मारा है, इसका भी हिसाब होगा। सुभान अल्लाह, आप समझ सकते हैं, एक यानी ये जो बताया गया ना, आपने कई दफा सुना होगा सींग वाली बकरी ने बेसींग बकरी को मारा तो उसका भी इंसाफ होगा। भाई आप ये भी देखें ना, अगर सींग वाली बकरी है उससे हिसाब लिया जा रहा है तो सींगों वाले इंसान भी तो है ना, क्या मतलब हुआ, इख्तियार रखने वाले इंसान भी हैं और कुछ हैं जो बे इख्तियार हैं, कमजोर हैं। ये इख्तियार वालों ने, जिनके पास इख्तियार है, जिनको अल्लाह ने कुछ ऐसा दिया हुआ है वो कुछ कर सकते हैं, ज्यादती कर सकते हैं, जुल्म कर सकते हैं, हक मार सकते हैं, हक ले सकते हैं दूसरे का, किसी को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इख्तियार दिया है, अल्लाह ने उनको सींग दिए हुए, वो बेइख्तियारों के ऊपर अगर कोई ज्यादती करेगा तो फिर उससे पूछ क्या ना होगी। अगर सींग वाली बकरी से पूछ हो रही है, उससे बदला लिया जा रहा है, बेसींग बकरी को बदला वहां पे भी दिलवाया जा रहा है, तो आप सोचें जो बेसींग इंसान है उनको ना बदला दिलवाया जाएगा। जर्रे बराबर भी किसी के साथ ज्यादती हुई तो वो उस दिन अदा करनी पड़ेगी, उसके आमाल नामे से निकाली जाएगी उसकी नेकियों की सूरत में। इसलिए ये याद रखें कि जिसने जुल्म किया वो उसकी तो उस दिन बहुत ही बड़ी नाकामी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तब से इस पर मौत से ज़्यादा सख्त वक्त कोई नहीं आया, और फिर मौत के बाद के मराहिल मौत से भी ज़्यादा सख्त हैं। बेशक लोग हशर के दिन की सख्ती से दो चार होने वाले हैं, जिससे पसीने की लगाम आएगी, पसीना इतना बहेगा कि अगर इसमें कश्तियां चलाई जाएं तो वो चलने लगे। इस दिन ये हाल होगा सख्ती का। और इब्ने मसूद फरमाते हैं, क़यामत के दिन एक आदमी को पसीने की लगाम आई होगी और वो दुआ मांगेगा, ऐ मेरे रब मुझे इस मुसीबत से निजात दे, चाहे मुझे जन्नत जहन्नुम में ही भेज दे मगर इस मुसीबत से मुझे निजात दे। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है। तो वो दिन तो ऐसा सख्त होगा, वैसे ही किसी को होश ना होगा, किसी का नंगे बदन लोग खड़े होंगे और होश ना होगा, ये पास वाला नंगा है। और कहाँ ये कि जिसने जुल्म किया हो, जुल्म उठा के लाया हो, उसकी हालत क्या होगी। अब एक इंसान जुल्म कैसे करता है, किस किस मैदान में जुल्म करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जहन में भी ना समझ लोगों की तरह ये आ रहा हो, हाँ फलां वो सदर है ना वो बड़ा जालिम है, वो फलां वजीर आजम है वो बड़ा जालिम है, आजकल के सियासतदान बड़े जालिम है, ना समझ लोगों की तरह सिर्फ ये तो नहीं जहन में आ रहा। इसलिए ना समझ कह रहे हैं कि मैंने आपको बताया है जुल्म का माना क्या है, वडेरे और जमींदार वो बड़े जालिम होते हैं, लेकिन जब हम जुल्म करने लगते हैं तब क्या हाल होता है, क्या हम भी कभी जालिम होते हैं। जब जब हम हकदार का हक मारेंगे तब हम जालिम ही हैं। सबसे बड़ा हक तो अल्लाह ताला का है, जब नमाज छोड़ दी तो वो सबसे बड़ा जालिम है जिसने नमाज छोड़ दी। और जुल्म अजीम क्या है, अजीम जुल्म सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है, और बाकी अल्लाह ताला का हक उसको नहीं दिया, उसका हक था कि उसकी फरमाबरदारी की जाए, ये उसका हक है, जब उसकी नाफरमानी की तो क्या आप जालिम नहीं हो गए। तो हमारा जो जुल्म को समझने का सर्कल है ना बहुत महदूद है, हम बहुत ही यानी एक टिपिकल सी सोच रखते हैं जालिम के बारे में, जालिम वो फलाने जालिम वो ये जालिम, और मतलब इस तरह की चीज़ों को सिर्फ समझते हैं कि वो ही जालिम है, और ये यहाँ पे जो कहा गया ना हम तो इसमें बिल्कुल नहीं है। हालांकि हो सकता है कि कभी इंसान अपने आज़ाद से भी जुल्म कर रहा हो, जुल्म के मुख्तलिफ मैदान है ना, मसलन इंसान बात में जुल्म कर सकता है, जब किसी को ना हक बात कहते हैं आप, जो आपका हक नहीं था कहना और उसका हक नहीं बनता था कि उसको कही जाए, आपने कह दिए तो आपने जुल्म किया। जब आप अपनी समाज से जुल्म करते हैं कि ना हक बातें सुनते हैं, कभी दिल से जुल्म करते हैं जब ना हक बातें सोचते हैं, कभी इंसान ना हक अपने आज़ाद से ऐसे काम लेता है जिनसे वो कभी दूसरे इंसानों को तकलीफ पहुंचाता है, कभी अल्लाह के हक में कमी करता है। तो हकूक व फराइज की अदायगी की बजाय जब इंसान सिर्फ हक लेना जानता हो, हक देना ना जाने, वो जालिम ही तो है। अगर शौहर को उसका हक ना दिया जो उनका हक है, जो अल्लाह ताला ने बताया, तो जुल्मी तो है। अगर दूसरे मुसलमान को उसका हक ना दिया जाए तो जुल्मी है। हमसाए को उसका हक ना दिया जाए, जुल्म है। वालदैन के हकूक ना अदा किए जाए, जुल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का बायस होगा। ये जुलुमात बन जाएगा ना, अंधेरे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर साहिब हक को उसका हक दे दो, नहीं तो क़यामत के दिन देना पड़ेगा। और फिर क़यामत के दिन किस तरह हक देंगे? ज़िंदगी तो दोबारा आएगी नहीं, ये दुनिया की ज़िंदगी, कि इसमें आके फिर सब अच्छा अच्छा कर लें, ठीक ठीक कर लें, बल्कि वहां पे फिर अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी। तो देखें अपने घरों में, कहीं हम जालिम तो नहीं बने बैठे? जब बहू को उसका हक नहीं देंगे तो जुल्मी तो है। जब बहू सास को उसका हक नहीं देगी तो जुल्मी तो है। तो कैसा मंजर है ये, कि जहां इंसान गुनाहों का बोझ उठाए हांप रहा है, चेहरा झुका हुआ है, निगाहें जलील हुई हैं और बात करने की ताब नहीं है। अब ये हारा हुआ इंसान अपने लिए फैसले का मुंतजर है। उसको पता है कि मैंने कहाँ कहाँ हकूक मारे हैं, कहाँ कहाँ जुल्म किए हैं। अब इस बोझ को लेकर अब मैं कैसे पारूंगा? वमन यअमल मिनस सालिहाति वहुवा मुमिनुन फला यखाफु ज़ुल्मा वला हज़्मा। दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसे लोग हैं, एक तरफ तो वो जालिम है ना, कि अल्लाह ताला इससे अब हक दिलवाएंगे, और हदीसे कुदसी में भी है, अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल फरमाएगा, मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम, किसी जालिम के जुल्म को मैं अपने सामने से गुजरने नहीं दूंगा। अब देखें दूसरी तरफ, जो साले अमल करके आया और मोमिन भी है, इसलिए कि ईमान के बगैर कोई अमल कबूल है ही नहीं, कोई अमल नेकी बननी बनता ही नहीं। नेकी कब बनता है? कोई अमल, किसी अमल को भी नेकी कब कह सकते हैं? जब ईमान होगा। ईमान के बगैर अच्छे से अच्छा काम आपके लिए तो अच्छा हो सकता है, आपको तो नेकी नजर आ सकता है, अल्लाह ताला के हम नेकी के तौर पर काउंट ही नहीं होगा, उसकी काउंटिंग नहीं होगी, उसका कोई वजन नहीं होगा, क्योंकि ईमान ही नहीं था। ईमान ही वजन बनाता है ना साले अमल का। तो ऐसा इंसान जो ईमान भी लेकर आया, साले अमल भी लेकर आया, देखिए एक भी चीज मिसिंग हो गई तो डर आ जाएगा आगे। दोनों चीजें मौजूद है, साले अमल भी और ईमान भी, तो अब है ला यखाफु ज़ुल्मा वला हज़्मा, ना वो डरेगा जुल्म से, ना किसी हक तलफी से। उसको पता है मैं लेकर आया हूँ, मुझे पूरा पूरा दिया जाएगा, आज मैं पास हो ही जाऊँगा। और उसको पता है मेरी हक तलफी नहीं होगी। हक तलफी क्या मतलब है? यानी ये कि नेकियों का अजर कम करके दे दिया जाए, या कुछ नेकियों का अजर दिया ही ना जाए, हजम कर ली जाए। जैसे दुनिया में होता है ना, किसी को भी मौका मिल जाता है वो उसकी चीज़ ही हजम कर लेता है। उसको पता है ये गरीब है, मजबूर है, मिस्कीन है, चलो आज हमें मौका मिल गया, आज हजम कर लो, मुकर ही जाओ। तो ऐसा नहीं होगा किसी ने नेकी की और उसकी नेकी हजम कर ली जाए, बल्कि हर एक को उसका हक दिया जाएगा, उसको जुल्म का भी नहीं डर होगा, उसको वो तो खुश होगा, सारे हकों को अदा किए हैं, ना उसको ये होगा कि मुझसे हल तलफी की जाएगी, ना बेइंसाफी का डर होगा। यहाँ पे जुल्म का माना बेइंसाफी है, कि कोई बेइंसाफी नहीं होगी मेरे साथ, मसला ना किसी और के गुनाह लेके मेरे साथ डाल दिए जाए। अब अक्सर होता ना दुनिया में, जो रिश्वत देता है उसके गुनाह पकड़ के, उसका जुर्म पकड़ के किसी और के सर थोप दिया जाता, ऐसा कुछ नहीं होगा वहां पे। बल्कि من يعمل مثقال ذرة خير يره من يعمل مثقال ذرة شر يره. شر بھی ذرے برابر ہوگا, اس کا بھی جواب ہے وہاں پہ اجر, اس کا بھی بدلہ ہے. خیر ہوگی تو اس کا بھی بدلہ ہے. تو اعمال نامے سے کوئی چیز بھی, چاہے قولی ہو عملی ہو, کسی طرح کی بھی بات ہو, مگر جہاں پہ کسی نے ظلم کیا وہ پاس نہیں ہو سکتا, وہ گزر نہیں سکتا. یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی بڑی قسم ہے نا اس میں, جو حدیث قدسی میں نے آپ کو سنائی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گزرنے نہیں دوں گا, میرے آگے سے پاس ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے سامنے سے گزر کے جائیں گے ہی تو آگے نہ جنت میں جا سکتے ہیں. آج دنیا میں سکے ماں باپ, سکے بہن بھائی, وہ حق دیتے ہوئے ڈنڈی مار جاتے ہیں, کمی کر جاتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اتنے کانشس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. وفات سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ کسی کے ساتھ میری طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو, مجھ سے بدلہ لے لے. لوگوں اگر میں نے تم میں سے کسی کو مارا ہو یا کسی سے زیادتی کی ہو, وہ بدلہ لے. اس پہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ نے فلاں موقع پر مجھے ایک لگائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدلہ لے لو. اس نے کہا کہ جب آپ نے مجھے مارا تھا نا تو میری کمر پہ کوئی کپڑا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو چوم لیا. اصل میں بوسا لینا مقصود تھا, چومنا چاہتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہ کی تھی, کوئی ظلم نہ کیا تھا, پھر بھی اتنے کیئرفل تھے کہیں یہ نہ ہو کہ کسی کے اوپر میری طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو, اس کی وہاں پہ پوچھ ہو جائے. تو دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی ہے نا, تو اس کے بعد کوئی شک نہیں رہ جاتا اس چیز میں کہ کسی کو وہاں پہ بدلہ نہیں ملے گا, میرا حق مارا جائے گا. ہم یہاں پہ اتنا زیادہ حقوق کے پیچھے بھاگتے ہیں, حقوق اتنے مانگتے ہیں, اتنی ساری زندگی حقوق کی جنگ کرتے رہتے ہیں. میرا یہ حق مار لیا فلاں نے, اس سے میں حق چھین رہی ہوں, اس سے حق لے رہی ہوں, میرا یہ حق رہ گیا, میرا وہ حق رہ گیا. سارا وقت اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا حق کہاں کہاں نہیں دیا گیا. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں اس دن حقوق دلواؤں گا, کسی کے اوپر ظلم ہوگا ہی نہیں, تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ناانصافی کرے؟ آپ کا حق کسی نے مارا ہو اور وہ ایسے ہی کراس کر جائے, اپنے اوپر بھی رکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ جہاں پہ میرا حق مارا گیا ہو, میرے ساتھ اگر ظلم ہوا تو مجھے کیا فکر ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ اپنے فرائض کے لیے فکر ہونی چاہیے, میرے فرائض ادا ہوئے یا نہیں, کیونکہ حق تو اللہ نے دلا دینا. جو آپ کا ہے حق وہ کہیں نہیں گیا, اس لیے اس کے لیے جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آج نہیں ملا کل مل جائے گا. آخرت جو ہے وہ کل ہی تو ہے, زیادہ دور تو نہیں ہے. آج نہ ملا کل صحیح, پھر فکر کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پیچھے کیوں ہلکان ہو رہے ہو, کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس کی فکر کرو, اس کا سوال تم سے کل ہوگا. اور آپ تو بڑے اچھے رہ گئے اگر یہاں پہ نہیں حق بھی ملا, وہاں پہ جا کے نیکیوں کی صورت میں مل جائے گا, جہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہاں پہ آپ کو کسی کی نیکیاں مل جائیں گی. مفت میں بیٹھے بٹھائے حج مل رہے ہیں, مفت میں بیٹھے بٹھائے تہجدیں کسی کی مل رہی ہیں, مفت میں بیٹھے بٹھائے کسی کی اور نیکیاں مل رہی ہیں. اچھا آپ اگر سوچتے ہیں وہ فلاں اس کی تو کوئی نیکی نہیں, خیر وہ تو ہم کسی کے بارے میں نہیں جج کر سکتے, لیکن اگر کسی کے پاس کوئی نیکی نہ بھی ہوئی تو آپ کے لیے کیا یہ فائدہ نہیں ہے کہ مفت میں بیٹھے بٹھائے آپ کے جو غلط کام ہیں وہ آپ کے اعمال نامے سے اریز کر دیے جائیں, کسی اور پہ لاد دیے جائیں گے؟ मौत में निकाल निकाल के उसके अमालनामे में डाले जाते रहेंगे। गुनाह किए आपने हैं, भुगतना उसको पड़ रहा है। तो आपके पास तो मतलब नफा का ही सौदा है, फिर इसलिए हक अदा करने की फिक्र ज्यादा किया करें। अल्लाह ना करे कि हमें लोगों के गुनाह अपने सर लेने पड़े क्योंकि हमने ज्यादतियाँ की हुई हैं, जुल्म हमने किए हैं। तो इसलिए हकूक अदा करने की फिक्र करें, हकूक लेने की उस फिक्र में घुलते ना जाएं। हमारी ज़्यादातर फिक्रें यही होती ना, इस चीज़ में परेशान रहते हैं और डिस्कशन भी यही होती रहती है, बताएं भला क्या ये मेरा हक नहीं है, फिर उसने फलाने ने क्यों नहीं दिया मेरा हक। हक के लिए ज़रूर अपने फाइट करें, हक ले सकते हैं आप अपना, लेकिन उसकी इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा फिक्र इस चीज़ की होनी चाहिए कि मुझे हक अदा करना है, मेरे ऊपर दूसरे का हक है।